नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। अडानी समूह ने जापान, ताइवान और हवाई के बाजारों में हरित हाइड्रोजन की बिक्री के लिए जापानी समूह कोवा समूह के साथ संयुक्त उद्यम की बृहस्पतिवार को घोषणा की। संयुक्त उद्यम में अडानी और कोवा की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। उद्योगपति गौतम अडानी नीत समूह भारत में पूरी तरह से एकीकृत हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए अगले 10 वर्षों में $50 अरब तक का निवेश करेगा। इसमें शुरुआती चरण में 10 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन शामिल है, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 लाख टन किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वाहन के डीलर को भी वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं खोलनी चाहिए। पांचवे ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर रही है। इससे सरकार डीलर को वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं शुरू करने की अनुमति देगी। उन्होंने कहा कि भारत वैकल्पिक ईंधन तथा जैव ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रहा है। सरकार भारत को हरित हाइड्रोजन का सबसे बड़ा निर्माता बनाने के लिए काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। वाहन डीलर भारत को $5,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मास्टरकार्ड इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को अपना गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार कुमार मास्टरकार्ड की दक्षिण एशियाई कार्यकारी नेतृत्व टीम का मार्गदर्शन करेंगे। इसके प्रमुख गौतम अग्रवाल हैं। मास्टरकार्ड के एशिया प्रशांत के अध्यक्ष अरि सरकार ने कहा कि कुमार घरेलू स्तर पर विस्तार करने के प्रयासों में स्थानीय नेतृत्व टीम के साथ काम करेंगे। वह भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए मास्टरकार्ड की प्रतिबद्धता को बल देंगे। वहीं कुमार ने कहा कि साझेदारी तथा समावेशी वृद्धि के जरिए समृद्धि लाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मास्टरकार्ड के पास भारत के जीवंत भुगतान प्रौद्योगिकी परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देने की प्रौद्योगिकी क्षमता और संसाधन है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण आपूर्ति व्यवस्था में एक प्रमुख देश के रूप में उभरेगा और निर्यातक बनेगा। उन्होंने कहा कि देश में सौर विनिर्माण क्षमता 2026 तक 1,00,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए के वाय के साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लागू की है। इससे 2026 तक 48,000 मेगावाट क्षमता के सौर उपकरण विनिर्माण क्षमता स्थापित करने में मदद मिलने का अनुमान है। भल्ला ने उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में कहा, हमारा लक्ष्य देश को नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों का महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाना है। आतिथ्य क्षेत्र की कंपनी महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स उत्तराखंड में अगले कुछ साल में 4-5 रिजॉर्ट बनाएगी। कंपनी इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने उत्तराखंड सरकार के साथ इस संबंध में समझौता किया है। कंपनी ने बयान में कहा कि उसका ये किसी राज्य में सबसे बड़ा निवेश है। उसकी योजना 2030 तक अपने कमरों की संख्या 10,000 करने की है, जो फिलहाल 5,000 है। बयान के अनुसार ब्रांड क्लब महिंद्रा के अंतर्गत भारत की प्रमुख आतिथ्य कंपनी MHRIL ने आज उत्तराखंड में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और अगले कुछ साल में 4-5 रिजॉर्ट बनाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस अपने ऐतिहासिक राजनीतिक तथा आध्यात्मिक शहर मॉस्को की यात्रा के लिए भारतीय पर्यटकों को लुभाने का प्रयास कर रहा है। मॉस्को शहर की पर्यटन समिति शहर को न केवल एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बल्कि एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। वह व्यापारिक भागीदारों, पर्यटकों तथा अवकाश बिताने वालों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। मॉस्को ने मित्र राष्ट्र के पर्यटन क्षेत्रों के साथ सहयोग को भी मजबूत किया, साथ ही शहर की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए व्यावसायिक यात्राओं की व्यवस्था की है। समिति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग के प्रमुख बुलेट नूर मुखानोव ने कहा, हम अब मॉस्को में भारतीय पर्यटकों की आवाजाही को उस स्तर पर बहाल करने की राह पर हैं, जैसा कि वैश्विक महामारी से पहले थी। नेपाल सरकार घरेलू मांग को पूरा करने के लिए विजयदशमी और दीपावली सहित आगामी त्योहारों से पहले भारत से 20,000 मीट्रिक टन चीनी आयात करेगा। उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए 60,000 मीट्रिक टन चीनी आयात करने के लिए सीमा शुल्क छूट देने का आग्रह किया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने फिलहाल केवल 20,000 मीट्रिक टन चीनी आयात करने की अनुमति ही दी। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता धनीराम शर्मा के मुताबिक मंत्रालय ने सीमा शुल्क पर 50% की छूट दी है, यानी इससे पहले लगाए गए 30% सीमा शुल्क से 15% कम। शर्मा ने कहा कि दो कंपनियां सॉल्ट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और फूड मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी दोनों आगामी त्योहारों सीजन के लिए 10-10,000 मीट्रिक टन चीनी का आयात करेंगी। रियल्टी कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने 730 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए प्रति शेयर 366 से 385 रुपए का मूल्य दायरा तय किया है। कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार आईपीओ 20 सितंबर को खुलेगा और 22 सितंबर को बंद होगा। एंकर निवेशक 18 सितंबर को बोली लगा सकते हैं। आईपीओ में 603 करोड़ रुपए नए शेयर और बिक्री पेशकश के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के 127 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर शामिल हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।